أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نور بن محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. محترم، جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے، سیرت ائمہ اطہار اور بالخص سیرت ام المؤمنین کے حوالے سے ہم نے اس چند جلسات کا آغاز کیا، اور پچھلے ہفتے میں سیرت ام المؤمنین کے حوالے سے ایک جلسہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا، اور اس جلسے کے اندر جو ہماری بنیادی توجہ تھی وہ سیرت ام المؤمنین کے چند بنیادی نکات کی سمجھ تھی. اگر ہم خلاصی طور پر دیکھنا چاہیں تو متعدد مضامین کو ہم نے گفتگو میں قرار دیا تھا، جن میں سے ایک یہ آپ کے سامنے تھا، سیرت اور تاریخ کا فرق، اس کے بعد سیرت امیر المومنین کی اہمیت، منتخب ترین فضائل امیر المومنین، حیات امیر المومنین، اس کو ہم نے چار دور میں تقسیم کیا تھا، دلائل خلافت امیر المومنین کے، اور سلائڈ ابھی آپ کو دیں گے، اس کے بعد غزوہ خلافت کے اسباب تھے، منتخب ترین امیر فضائل امیر المومنین، اس کے بعد حیات امیر المومنین جس کا ہم نے چار دور کے اندر جائزہ لیا تھا، دلائل خلافت امیر المومنین کے مختلف تین موضوعات پہ بحث ہوئی تھی، غصب خلافت کے اسباب، کیوں امیر المومنین کی خلافت کو غصب کیا گیا، اس کے بعد واقعی سقیفہ کا تحلیلی جائزہ کہ واقعی سقیفہ میں کیا در حقیقت کار فرما رہا، غدیر حکم کا ذکر نہ ہونا، واقع صفیفہ کے دوران غدیر حکم ذکر نہیں ہوا تھا، اس کا ہم جائزہ لیا، غصب خلافت اور سقوط امیر المومنین کے ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتے تھے اس موقع پر، اگر ہم ممکنہ رد عمل دیکھنا چاہتے اس کا ہم نے جائزہ لیا، پھر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا رد عمل کس قسم کا تھا اس کو ہم نے دیکھنے کی کوشش کی، اس بات میں سقوط، کیوں امیر المومنین نے سقوط کرنایا جس کو ہم خاموشی تعبیر کرتے ہیں، خاموشی کیا، خاموشی کے اسباب کیا تھے، امیر المومنین کے موقف کے بنیادی اراکین کیا تھے، امیر المومنین کیا چاہتے تھے اس زمانے کے اندر جو 25 سال کی لمبی مدت قرار پاتی ہے، دعوت ابو سفیان کے مضمرات کیا تھے، کیوں ابو سفیان نے امیر المومنین کو دعوت دی کہ آپ یہ بیعت کیجئے، اور امیر المومنین کے انکار کے اسباب کیا تھے، یہ موضوعات تھے جو پچھلی دفعہ میں قرار پائے. مزید آگے بڑھائیے. جی یہاں سے ہمارا دہر کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اور سلائیڈ آگے بڑھتے ہیں. ہاں، یہ گزشتہ عناوین کا خلاصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اب آگے سلائیڈ اور بڑھائیں. یہاں سے ہماری اصلی بحث شروع ہو پائے گی. اب یہ ہے کہ کیوں ہم نے ضرورت کا احساس کیا، اور اس بحث کی ضرورت ہمیں کیوں پڑی، ہم نے اب تک جو احساس کیا یہ کہ ہمیں معاشرے کے اندر امیر المومنین کی تاریخ کا جائزہ لیا گیا ہے، اور امیر المومنین کی چند واقعات کو بہت کثرت سے بیان کیا گیا، لیکن امیر المومنین کی زندگی میں جو پیش آیا وہ کیوں پیش آیا، اور امیر المومنین جیسا اگر کوئی چاہے اس کے اوپر عمل کرے تو اسے کن مراحل سے گزرنا پڑے گا، یہ وہ موضوعات ہیں جن کے اوپر بہت کم توجہ دی گئی. ہم نے کوشش یہ کی کہ کام تحریری انداز میں انجام پائے، جیسا ہم نے پہلے وقت سے ہی کہا کہ ہم سیرت اور تاریخ کو دو علیحدہ موضوعات سمجھتے ہیں، اور جس کو اس وقت ہم بحث میں لانا چاہتے ہیں وہ سیرت ہے، یہ تاریخ نہیں ہے. جو گزشتہ بحث کو بڑھاتے ہوئے ہم پہنچے ہوئے اس عنوان پر پہنچے کہ خلافت امیر المومنین کے اوپر غصب کیا گیا، خلافت اپنے محور سے تبدیل ہو گئی، خلافت کہیں اور چلی گئی، اب یہ جو کچھ انجام پایا اس کا امیر المومنین نے سکوت اختیار نہیں کیا، سکوت بے معنی کہ وہ خاموش ہو گئے ہوں، اور خاموشی اس معنی میں کہ وہ راضی ہو گئے ہوں، بلکہ انہوں نے ایک فعال کردار ادا کیا، اسلام کی مصلحتوں میں آیا تو اسلام کے دفاع کے لیے مشورے بھی دیے، مقابلہ کرنا ہوا تو خلفا کے مقابلے میں اپنے حق کا اظہار بھی کیا، اسلام کے لیے اگر ان کو اپنی جان نثار کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، یہ تمام کام امیر المومنین اس 25 سال کے دوران میں انجام دیتے رہے، अब उन दिन को ये सवाल करें कि इस 25 साल में अमीर उलमोमिन खलीफा रहे या ना रहे, नुकसान क्या हुआ? तो ये क्वेश्चन इंतहाई अहम इस हिसाब से करार पाता है कि बाद लोगों ने यह कहा कि अगर अमीर उलमोमिन खलीफा बनते तो वो भी इस्लाम पर ही अमल करवाते। ये उस जमाने में बाद लोगों ने इस तरह से पेश किया विजय कि अगर अमीर उलमोमिन खलीफा बनते तब भी इस्लाम पर अमल करवाते, अगर खलीफा अव्वल खलीफा बन गए तो उन्होंने भी और क्या करना था, इस्लाम ही पर अमल करवाना था। उसके मुकाबले में हमें ये देखना पड़ेगा कि इस 25 साल के असली नुकसान कहां पर करार पाएंगे। और ये काम तहरीली अंदाज में अंजाम पाए, इसमें कोई मुनाजरे की हमें कोई कोशिश नहीं करनी। जरा सा इस बात को भी टच करना चाहूंगा ये कि इन बातों को साबित करने का तरीकाकार क्या होना चाहिए। ये जो हमने यहाँ पर पेश कर दिया तहरीली नुकते के तौर पर, ये एक तारीखी वाकई की तहलील है। अच्छा, तारीखी वाकई चूंकि मुसलमान में से है लिहाजा हमें उसके ऊपर कोटेशन देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पर खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर खलीफा बने, इस पर कोई कोटेशन दें, ज़ाहिर है इस पर कोटेशन की जरूरत नहीं, ज़ाहिर है रसूल ग्रामीण के बाद जानशीन अमीर मोमिनीन नहीं हुए। तारीखी तौर पर जो वाकया पेश आ गया वो ये कि अमीर मोमिनीन की खिलाफत रस्म हो गई और कोई और खलीफा बन गया, तो तीन खलीफा आते रहे। अब इसमें हमें कोटेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हमारी असल मुश्किल यहाँ पेश आती है कि जो हम तहलील कर रहे हैं वो तहलील कैसे सही तहलील है, कि उसका तरीकाकार ये होता है कि हम वाकयात को टकराने की कोशिश करते हैं, वाकयात को एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करते हैं, और मिलाने के बाद जो सही तरीन एनालिसिस हमें हासिल होता है उसे हम पेश करने की या कबूल या रद्द करने की कोशिश करते हैं। अब जरा यहाँ पे तवज्जो फरमाइएगा, दौर खिलाफत सलासा के नुकसान क्या थे? जो तीन खुलफा आए अमीर मोमिनीन से पहले, इनके नुकसान क्या थे? पहला नुकसान, सकीफा के नतीजे में जाहिलियत बिलअखस कबीला परस्ती और कौम परस्ती की तरवीज हो गई। सकीफा के अंदर हमने अर्ज किया कि कहीं पर भी एक गुफ्तगू एक कलाम कुरान की किसी आयत से नहीं हुआ, सकीफा में कहीं पर भी एक भी जिक्र नबी अकरम की किसी हदीस का नहीं हुआ। बात बस इतनी हुई कि कुरैश में से होना चाहिए, फिर बात इतनी हुई कि कुरैश में से होना चाहिए तो उसको नबी के नजदीक में से होना चाहिए, रिश्तेदारों में से होना चाहिए, इससे ज्यादा बात आगे नहीं हुई। किसी ने कोई आयत नहीं दी, किसी ने कोई हदीस नहीं दी, और ये दोनों बातें कि इस कबीले से होना चाहिए, रिश्तेदार होना चाहिए, ये जाहिलियत की सकाफत थी कि जो मुंतखब हो वो हमारे कबीले का हो। यही कुरैश था जो जाहिलियत के जमाने में मोहतरम था, उसी एहतराम में कुरैश को न दलाइल की बुनियाद पर, न तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर, न किसी इल्म की बुनियाद पर, बस कुरैश होने की बुनियाद पर तस्लीम कर लिया गया। तो वो खुद ब खुद जाहिलियत जो थी वो लोगों के अंदर सामने आ गई। यानी सकीफा के दलाइल में से एक दलील ये दी गई कि अरब कबूल नहीं करेंगे, यानी ये नहीं कहा मुत्तकी और परहेजगार कबूल नहीं करेंगे, ये तकवा के खिलाफ होगा, यूं कहा गया अरब कबूल नहीं करेंगे। इसका मतलब है कोई कौम परस्ती जो दिमागों के अंदर मौजूद थी, तो ये कौम परस्ती रुकी नहीं, सकीफा के बाद ये कौम परस्ती बढ़ती चली गई और बनी उमैया खासकर इस कौम परस्ती को फरोग देने में पेश पेश थे। उसकी वजह यह है कि अहले बैत के अक्सर हामी गैर अरब में मौजूद थे, अहले बैत के हामी ईरानियों के अंदर मौजूद थे, अहले बैत के हामी सिंधियों के अंदर मौजूद थे। अरब परस्ती के ऊपर जो ताकीद की बनी उमैया ने, उसकी एक कोशिश, उसका एक सबब यह था कि चाहते थे किसी तरह अहले बैत को काउंटर कर दिया जाए, मुंजवी कर दिया जाए। एक नतीजा तो यह हुआ कि कबीला परस्ती और कौम परस्ती को तरवीज हासिल हुई। दूसरा मामला बैतुल माल की गलत तकसीम से मानवियत की जगह मादा परस्ती और जाहिर परस्ती का फरोग हासिल हुआ। अगर इसमें पस मंजर ये देखिए कि बैतुल माल की जो गलत तकसीम हुई, यहां पर दोबारा एक और बात व्यक्त करता चलूं वो ये कि ये जो हम खुलफा पे तनकीद कर रहे हैं ये तजियाती तनकीद है। अगर कोई ये समझता है कि नहीं ये तनकीद काबिल कबूल नहीं है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप अपनी दलील दीजिए। अमलन इस तरह से हुआ कि खलीफा दोगम के जमाने में बैतुल माल से पैसे को तकसीम करने के लिए आदलाना निजाम इख्तियार नहीं किया गया। यानी ये नहीं कहा गया कि जिसको भी पैसा मिलेगा सबको मुसावी मिल जाएगा, यूं कहा गया कि जो पहले इस्लाम लाए उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो बाद में इस्लाम लाए उन्हें कम मिलेगा, जिसने जंगे बदर में शिरकत की है उसे ज्यादा मिलेगा, जिसने जंगे बदर में शिरकत नहीं की उसे कम मिलेगा। इस एतबार से बाज़ोकात ऐसा भी हुआ कि किसी को बहुत बड़ी रकम मिलने लगी, 6-6 लाख दिरहम मिलने लगे, और किसी को 4 दिरहम 5 दिरहम तक मिलना शुरू हो गए। तो ये जो नाइंसाफी हुई बैतुल माल की तकसीम से, इससे खुद ब खुद लोगों में मादा परस्ती का रुझान जो है वो आगे आ गया, पैसा तकसीम होने में गलती हुई और मादा परस्ती जाहिर परस्ती फरोग पा गई। जाहिर परस्ती किस तरीके से, मुझे कि लोगों ने बस इस जाहिर को देखना शुरू कर दिया कि कोई कितने साल पहले इस्लाम लाया था, ये नहीं सोचा कि इसके अंदर तकवा और परहेजगारी जो है वो सबसे बड़ा मेयार है। मुद्दत, कितनी मुद्दत पहले इस्लाम लाना, ये मेयार नहीं करार पाती इस्लाम। پھر بنی امیہ کے ساتھ سازگار کے نتیجے میں اموی اقتدار کا زمینہ فراہم ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں خلفائے ثالثہ کی کیا غلطی ہے؟ جب خلفائے ثالثہ کی خلافت موجود تھی تو ان کے سامنے مخالفین دو تھے، ایک تو وہ جو بنی ہاشم تھے یعنی خاندان اہل بیت، دوسرا ان کے سامنے مخالف بنی امیہ تھے۔ خلفائے ثالثہ بھی سمجھ رہے تھے کہ بنی امیہ کی اقتدار کے اوپر نظر ہے، ان کے سامنے دو دشمن موجود تھے، ایک اہل بیت اور ایک بنی امیہ۔ انہوں نے بنی امیہ کو اپنے سے خوش کیا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو معاشرے کے اندر منظوی کرنے کی کوشش کی۔ بنی امیہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا؟ بولے کہ جو ان کا سب سے پسندیدہ علاقہ تھا یعنی شام، وہ بنی امیہ کے حوالے کر دیا۔ خلیفہ دوموں نے معاویہ کو شام کی طرف ارسال کر دیا گورنر بنا کر۔ یہ کام کیوں کیا گیا؟ بلکہ اس کا کوئی معیار نہیں بنتا تھا، یعنی خلیفہ دوم کے اپنے معیار میں بھی معاویہ مناسب آدمی نہیں تھا۔ پھر یہ کام کیوں کیا گیا؟ اس کی صرف ایک وجہ تھی، مجھے کہ بنی امیہ کو کسی طریقے سے خاموش کروانا تھا، مجھے کہ یہ کسی طریقے سے معاملے کو مزید خراب کرنے کی طرف نہ جائیں، تو انہیں ایک اقتدار دے دیا گیا تاکہ یہ خاموش رہیں۔ یہ جو بنی امیہ کو اقتدار دے دیا گیا، یہ ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑا گراؤنڈ بنا دیتا ہے بنی امیہ کے آگے کی کارروائیوں کے لیے۔ حضرت خلیفہ دوم کے زمانے میں شام کو حوالے کیا گیا، خلیفہ سیوم کے زمانے میں جن کا تعلق بنی امیہ سے بنتا تھا، انہوں نے اس اموی شامی اقتدار کو اور زیادہ بڑھا دیا، مزید علاقے اس کے اندر اضافہ کر دیے۔ اس کے نتیجے میں بنی امیہ کی اسلامی علاقے کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ اور شدت پا گیا۔ بس ایک قانون ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، بولیے کہ اگر کوئی شخص حق کو قبول نہیں کرے گا، ظلم کا راستہ اختیار کرے گا، تو وہ ظلم یقیناً بڑھے گا اور خود اس شخص کو بھی کھا جائے گا، یقیناً ظلم بڑھے گا اور اس شخص کو بھی کھا جائے گا۔ یعنی نعوذ باللہ اگر ایسا ہے کہ میرے سامنے ایک آدمی کا حق ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ ناحق ہے، تو میں حق کو محروم کر دیتا ہوں، ناحق کو طاقت دے دیتا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود اس ناحق کا شکار ہو جاؤں گا، میں خود اس ناحق کے ظلم کا شکار ہوں گا۔ ہم سمجھتے ہیں یہی خلفاء کے ساتھ پیش آیا۔ بنی امیہ کے ساتھ سازباز کے نتیجے میں اموی اقتدار کا زمینہ فراہم ہوا۔ ایک اور معاملہ یہ کہ بے بنیاد اجتہاد سے اسلام میں عقیدتی اور عملی انحرافات پیدا ہو گئے۔ بے بنیاد اجتہاد، ایک دفعہ وہ اجتہاد ہوتا ہے جو قرآن اور سنت کی بنیاد پر انجام پا رہا ہوتا ہے، ایک دفعہ وہ اجتہاد ہوتا ہے جس میں پسند ناپسند، ذاتی پسند ناپسند کی دخالت ہو جاتی ہے۔ تو جب بے بنیاد اجتہاد انجام پاتا ہے، اس وقت اسلام منحرف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بے بنیاد اسلام کیسے انجام پایا؟ بے بنیاد اجتہاد، اس کی نشانی یہ تھی کہ صبح کو الصلاۃ خیر من النوم سنا تو کہا یہ مجھے اچھا لگا، اس کو داخل کر دو، یا کسی کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ دربار میں کھڑے دیکھا کہ وہ احترام کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو سمیٹے ہوئے تھا، تو کہا کہ یہ حالت مجھے اچھی لگی، اس کو نماز میں قرار دے دوں۔ یا تراویح کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ نبی کے زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی، لیکن اب ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس فرصت بہت زیادہ ہے، تو ہم تراویح منعقد کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے جو ذاتی پسند ناپسند پر اجتہاد ہوئے، اس کے نتیجے میں اسلام میں عملی اور فکری انحرافات آنا شروع ہو گئے۔ فکری انحرافات اس طرح سے آئے کہ جبریہ کا عقیدہ پھیلنا شروع ہو گیا، خاص کر بنی امیہ کے ذریعے۔ بنی امیہ جب ظلم کرتے تھے، لوگ ان پر اعتراض کرتے تھے، تو بنی امیہ جواب میں کہتے تھے کہ اگر خدا نے اس ظلم کو ناپسند کیا ہوتا تو وہ ہمیں خود ہی ہٹا دیتا، یہ جو خدا نہیں ہٹا رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی ہم لوگوں کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ وہ جبریہ کا عقیدہ تھا جس کے آہستہ آہستہ اثر و رسوخ بڑھتے چلے گئے۔ آخر میں احادیث نبوی پر پابندی سے اسرائیلیات کے فروغ کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ خلفاء نے ایک موقع پر احساس کیا کہ اگر قرآن کریم کے مقابلے میں احادیث نبوی کو بھی بیان کیا گیا، حدیث نبوی کو بھی بیان کیا تو قرآن کریم کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور قرآن کریم کی اہمیت ختم ہو گئی تو اس کو دفاع کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ احادیث نبوی کو بیان نہ کیا جائے، احادیث نبوی کو لوگوں کو ممبر پر سے بیان کرنے کی پابندی لگا دی۔ احادیث نبوی کے بیان پر جو پابندی لگی، تو اس سے مصنوعی علماء کے لیے راستہ فراہم ہو گیا کہ وہ مصنوعی علماء آئیں میدان کے اندر اور جو ان کے ذہن میں آتا ہے وہ لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اسلام کے اندر مزید انحرافات آ گئے۔ اب مسلسل واقعات موجود ہیں، ان تمام چیزوں کے پیچھے واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر خلیفہ ثالث کے محفل میں ایک یہودی عالم جو ہے وہ کثرت کے ساتھ وہاں پر ہوا کرتا تھا، اور وہ کچھ عرصے پہلے اسلام لایا تھا۔ خلیفہ ثالث ایک موقع پر اس سے فتویٰ لیتے ہیں کہ زکات کے بارے میں، فلاں تمہارا حکم کیا ہے؟ ابوذر غفاری وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ یہودی کچھ حکم دیتا ہے، ابوذر غفاری اپنی لاٹھی اس کے اوپر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو یہودی ہمیں سکھائے گا، कि इस्लाम का हुक्म क्या है, उसके बाद वो नबी अकरम का दिया हुआ हुक्म बताने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से आप कसरत के साथ रिवायात देखेंगे कुरान करीम की तफसीर में कि जो अकल और मंतिक के किसी दर्जे के ऊपर नहीं आएंगी, ये सब वो इसराइलियात थी जो उस जमाने के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सरायत करती चली गई। मिसाल के तौर पर एक रिवायत बहुत मशहूर उस जमाने में सुनी गई, वो ये कि कहा गया कि काबा हर रोज बैतुल मुकद्दस को सजदा करता है। वो कहा गया कि काबा हर रोज बैतुल मुकद्दस को सजदा करता है। अब जाहिर है जो भी सुनेगा फौरन समझ जाए कि ये इसराइली रिवायत है। उसकी वजह यह है कि बैतुल मुकद्दस का ताल्लुक जाहिर दीन यहूदियत से है और काबा का ताल्लुक दीन इस्लाम से है। तो कहा काबा बैतुल मुकद्दस को सजदा करता है ताकि काबे की अजमत को और अहमियत को माशरे के अंदर कम कर दिया जाए। इन नुकसानात के मुकाबले में अमीरुल मोमिनीन की कोशिश क्या थी? नुकसानात के मुकाबले में अमीरुल मोमिनीन जाहिर खामोश नहीं रह सकते थे। इमामत का तकाजा यह है कि वो दीन के दिफा के लिए आगे बढ़े। अमीरुल मोमिनीन ने मुख्तलिफ तरीकों से इस्लाम के दिफा की कोशिश की, जिसके मुकाबले में खिदमत में अर्ज करूंगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले सबसे पहले ये कि गज़बे खिलाफत पर एतराज के जरिए हकीकी इस्लाम का दिफा किया। एक रास्ता तो ये होता है कि मौला खामोश रह जाते, यानी आपने बहुत शायद सुना हो, कहीं ना कहीं सुना होगा मुझे कि बाज़ लोगों का कहना यह है कि मौला ने कभी भी कोई सही मुखालफत नहीं की। मुझे समझ में नहीं आता ऐसी कोई बात कहने वाले ने नहजुल बलागा क्यों नहीं पढ़ी। अगर वो नहजुल बलागा के अंदर खुतबा शख्सिया देखे जो महज तीसरा खुतबा है, तो उसके अंदर जिस कसरत के साथ अमीरुल मोमिनीन ने एतराजात किए हुए हैं, उनके होते हुए ये कहना कि अमीरुल मोमिनीन ने कभी एतराज नहीं किया, हमारी समझ में इस किस्म की कोई बात नहीं आती। तो अगर कोई ये समझता है कि अमीरुल मोमिनीन ने एतराज नहीं किया तो हम कहेंगे नहजुल बलागा में खुतबा शख्सिया पढ़ लिया। और अगर कोई ये कहता है कि खुतबा शख्सिया अमीरुल मोमिनीन का नहीं है तो उसके लिए एक अलहदा बहस है कि आया इस किस्म की अरबी जो उस खुतबा शख्सिया के अंदर दी हुई है, आया तारीख अरब में कहीं और मौजूद है अमीरुल मोमिनीन के अलावा, ये जो हवादिस को उसमें एनालिसिस किया गया है क्या वो कहीं और के ऊपर मौजूद होगा। तो गज़बे खिलाफत पर एतराज के जरिए हकीकी इस्लाम का अमीरुल मोमिनीन ने दिफा करने की कोशिश की। दूसरा मामला किरदार के जरिए मानवियत और इंसानियत का इहिया। आप तसव्वुर कीजिए बनी उमय्या की तरफ से मादा परस्ती फरोग पा रही थी, पैसे की गलत तकसीम के जरिए से लोग जाहिर परस्ती की तरफ चले गए थे। इस तमाम जाहिर परस्ती और मादा परस्ती के मुकाबले में अहले बैत थे जो मानवियत के ऊपर इसरार कर रहे थे और मानवियत पर इसरार करके मानवियत की जो असली फिक्र थी इस्लाम के अंदर उसको दिफा करने की कोशिश कर रहे थे। और अब आप तसव्वुर करें कि आज के माशरे में भी असली किरदार यही है। आज के माशरे के अंदर भी ये जो मादा परस्ती फैली हुई है, जाहिर परस्ती फैली हुई है, इसके मुकाबले में असली किरदार ये नहीं होगा कि औरत जाहिर परस्ती के अंदर कितना आगे बढ़ते चले जाए। असली किरदार इतना ये होगा कि कुछ लोग मादा परस्ती और जाहिर परस्ती तर्क करके मानवियत के समझाने की कोशिश करें, और अगर मानवियत के समझ गए तो जिस तरह से अमीरुल मोमिनीन ने मानवियत का दिफा किया मानवियत पर अमल करके, इस तरह से आज कोई किरदार अदा कर पाएगा। किरदार के जरिए से मानवियत और इंसानियत का इहिया। इल्म के जरिए से इन्हराफात का मुकाबला। बेबुनियाद इज्तिहाद हो रहा था, बेबुनियाद इज्तिहाद के जरिए से इस्लाम के अंदर इन्हराफात लाए जा रहे थे और मौला अपने इल्म के जरिए से इन इन्हराफात का मुकाबला करने की कोशिश करते थे। लिहाजा अगर किसी ने कहा कि मिसाल के तौर पर इस्लाम ने फला हुक्म डाल दिया जाए तो अमीरुल मोमिनीन ने मुखालफत की। हमारे पास रिवायतें मौजूद हैं इस तरह से, यानी अगर कोई तारीखी वाकई की तरफ जाने की कोशिश करें तो जब तरावी का वाकया पेश आया अमीरुल मोमिनीन ने इनकार किया, कहा कि मैं तरावी के वाकये में शिरकत नहीं करूंगा, तरावी में शिरकत नहीं करवाते थे, कभी भी किसी तरावी में शिरकत नहीं की। फिर जब अमीरुल मोमिनीन का अपना दौर आया तब बुनियादी मुश्किल सामने आ गई, और वो मुश्किल ये सामने आई कि अब क्या होगा, अब आया तरावी में शिरकत करेंगे, तरावी पढ़ने की इजाजत देंगे या तरावी पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। अमीरुल मोमिनीन उस मौके पर भी तरावी पढ़ने के लिए इजाजत नहीं दी, यानी खिलाफत की तरफ से तरावी पढ़ने को मना किया। तो खुद ब खुद लोगों के सामने अपने इल्म के जरिए से इन्हराफात का मुकाबला करने की कोशिश करते रहे। फिर हकीकी असाब के लिए रहनुमाई और सरपरस्ती, एक बहुत बड़ी मुश्किल ये पेश आती थी उस जमाने में, ये कि हक और बसीरत का रास्ता खत्म होता चला जा रहा था। माशरा जब एक साथ किसी गलती की तरफ चलना शुरू हो जाता है तो बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर ये ताकत होती है कि वो हक और बातिल को तशखीस दें और हक के रास्ते को तय करने की कोशिश करें। तो अमीरुल मोमिनीन ने उस मौके पर अपने असाब को जमा किया और अपने असाब को सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश की, कुर्बानियों और ईसा से असली रहबरी की निशानदेही। अगर कोई दुनिया के अंदर चाहे कि ये इसको तशखीस दे कि असली रहबर कौन सा है, वो जिस जो वाकयान हमदर्द है इस्लाम के लिए कौन सा है, तो उसे देखना पड़ेगा कि ईसार और कुर्बानियां कौन ज्यादा कर रहा है। बस एक दफा होता है कि कोई इंसान अपनी पुरतायुश जिंदगी के अंदर, पुर आसाइश जिंदगी के अंदर बैठकर इस्लाम से दिफा की बात कर रहा होता है, और एक मौका होता है कि इंसान मैदान अमल के अंदर कूद कर मुश्किल को तहमुल करता है, मसाइब को तहमुल करता है, और फिर इस्लाम की दिफा की बात करता है। तो अहले बैत अतहराम ने अपनी कुर्बानियों के जरिए से, अपने ईसार के जरिए से लोगों को बताने की कोशिश की कि असली रहबरी कहां पर मौजूद है। लेकिन ये मौका भी सुकूत का दौर नहीं था, ये मौका मुश्किलात का दौर था। खानदान अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम के लिए मुसलसल मुख्तलिफ अतराफ से मुश्किलात पेश आ रही थी। अगर आपके ध्यान में पिछले जलसे की कुछ गुफ्तगू रह गई हो तो हमने अर्ज किया था उस वक्त भी कि इस्लामी माशरा मुख्तलिफ ग्रोहों के अंदर तकसीम हो गया था। एक वो हिस्सा था कि जो जज्बातियत की खातिर, सिर्फ अपने जाती मफादात की खातिर अमीर उलमोमिन की मुखालफत कर रहे थे, एक वो थे जो किसी खानदानी बोझ की खातिर अमीर उलमोमिन की मुखालफत कर रहे थे। तो अब इन तमाम ने खानदान अहले बैत के खिलाफ अपनी अपनी साजिशों का दरवाजा खोला हुआ था। दौर खिलाफत सरासर में अहले बैत के खिलाफ की जाने वाली साजिशें, हम समझते हैं अहले बैत के मानवी मकाम और बरतरी के खिलाफ कोशिशें की गई, यानी कुछ ऐसा काम किया गया कि खानदान अहले बैत की जो मानवी बरतरी है वो अंडर क्वेश्चन चली जाए, वो किसी तरीके से मकाम कम हो जाए। उसके अंदर हमने लिखा, असली अहादीस छुपा कर और जाली अहादीस और मसनूई फजीलतों को गढ़कर। अब तरह एक मिसाल देखिएगा, अमीर मोमिन की एक फजीलत है साहिब जुल्फकार, जुल्फकार अमीर मोमिन के लिए नाजिल हुई है, इसके मुकाबले में एक मसनूई फजीलत किसी के लिए सैफुल्लाह नाम करके गढ़ दी गई कि ठीक है फला आदमी भी सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार है। अब जिसको सैफुल्लाह कहा गया वो है कि जिसके कारनामे अखलाकी पस्ती के कारनामे सबके सामने मौजूद थे, लेकिन उन तमाम के बावजूद एक मसनूई फजीलत जो है वो उसको बयान करने की कोशिश की गई। तो हम समझते हैं कि ये वो काम था जो उस जमाने के अंदर अंजाम पा रहा था, लिहाजा आप मुसलसल एक मुश्किल में शिकार हो जाएंगे इस्लामी रिवायतों को पढ़ने में, वो ये कि एक फजीलत आपको एक तरफ नजर आएगी, उसकी मुतजाद एक और फजीलत किसी और के पास नजर आएगी। मिसाल के तौर पर एक तरफ से आपको नजर आएगा कि नबी अकरम फरमा रहे इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गराबहा चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और एक इतरती अहले बैती मेरी इतरत। फिर इसके मुकाबले में एक और रिवायत आपको नजर आएगी जिसमें यह कहा गया है कि पूरी दुनिया के नामा आमाल एक पलड़े में और फला शख्स के नामा आमाल दूसरे पलड़े में रखे जाए तो वो पलड़ा ज्यादा भारी होगा। अब इंसान सोचता है कि नबी अकरम ने बिलाखिर ये मुतजाद फजीलतें क्यों कर दी, यानी नऊज़ुबिल्लाह क्या नबी अकरम ने मुतजाद फजीलतें बोल दी है, यानी नबी अकरम ने अपने कलाम के तआरुज को, टकराव को एहसास नहीं किया, यानी कि नहीं इनमें से कोई एक रिवायत गलत रिवायत है। यानी मिसाल के तौर पर आप और देखेंगे मुझे कि हजरत अबू ज़र गफ़ारी के लिए नबी अकरम की रिवायत मौजूद है कि जो जिन पर सूरज चमकता है उसमें अबू ज़र से सच्चा कम है, एक ये रिवायत आपके सामने। उसके मुकाबले में अब आप देखेंगे कि हजरत अबू ज़र को मदीने से जिला वतन किया गया, शाम से जिला वतन किया गया, मदीने वापस भेजा गया, फिर मदीने से जिला वतन किया गया, और वो रब्ज़ा के मकाम पर तन्हाई के आलम में, भूख और प्यास के आलम में दुनिया से रुख्सत हो गया। अब इंसान ये सवाल करता है कि या तो ये शख्स दुनिया का सच्चा तरीन शख्स है, और अगर ये दुनिया का इतना सच्चा आदमी है तो इसे जिलावतन क्यों किया जा रहा है। ये मुश्किलात थी जो उस दौर के अंदर बार बार आ रही थी कि जो मसनूई काम कर रहे थे वो खानदान अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम के साथ टकराए चले जा रहे थे। जैसा हम देखते हैं कि जब हजरत अबू ज़र को जिलावतन किया गया तो सिर्फ अमीर उलमोमिनीन और उनका खानदान था जो हजरत अबू ज़र को खुदा हाफिज कहने के लिए मदीने से बाहर आया, और जब वो बाहर आया तो उसके बाद खिलाफत ने उनसे भी सवाल किया कि आप लोग अबू ज़र को खुदा हाफिज कहने के लिए मदीने से बाहर क्यों गए थे। तो हम समझते हैं कि ये मुश्किलात थी उस जमाने में, गस्ब फिदक के जरिए मादी वसाइल से महरूम करने की कोशिश की गई। उसी जमाने में फिदक के गस्ब का वाकया पेश आया। अब मैं नहीं समझता इसके लिए मुझे तारीख रेफरेंस देने की जरूरत है कि फिदक के गस्ब का वाकया पेश आया, ये पूरी तारीख इस्लाम के अंदर वाज़ह सी चीज है कि अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम के पास एक बाग था, और वो बाग जो है वो कम से कम ये कि दुनिया में हर एक आदमी कबूल करेगा कि डिस्प्यूटेड हो गया। खलीफा अवल ने ये कहा कि इस पर आपका कोई हक नहीं है, और बीवी ने दावा किया कि इस पर हमारा हक है। अब ये जो गस्ब हुआ बाग फिदक, क्यों गज़ब हुआ, इसके पीछे अपने असबाब हैं, इसके पीछे अपने तहलीलात मौजूद हैं। लेकिन हमारे ख्याल में जो गज़ब हुआ वो इसलिए था कि खानदान अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के मकाम और मंजिलत को कम किया जाए। यानी आप तसव्वुर कीजिए, जब बीबी से कहा गया कि शाहिद लेकर आओ, तो बीबी ने अमीरुल मोमिनीन और बीबी उम्मे ऐमन को शहादत के तौर पर पेश किया, अमीरुल मोमिनीन को और उम्मे ऐमन को, इसमें कोई राज है। और इन दो गवाहियों को रद्द कर दिया गया, इन दो गवाहियों को रद्द कर दिया गया। अच्छा, अब सवाल यह है किसकी गवाही रद्द कर दी गई? अमीरुल मोमिनीन की गवाही रद्द हो गई, जिसके लिए रसूल अल्लाह ने कहा था कि ये जहां जाते हैं हक वहीं जाता है। अब आप देख रहे हैं ये काम क्यों किया गया, एक बाघ को बचाने के लिए। नहीं, मामला सिर्फ बाघ का नहीं था, मामला उस मकाम का था जो अमीरुल मोमिनीन की हैसियत में था। अच्छा, यहां पर भी एक राज है कि बीबी ने उम्मे ऐमन को क्यों मुंतखब किया शहादत देने के लिए, गवाही देने के लिए? तो बीबी ने चाहा कि खलीफा के इस्तेदलाल को गवाह की जात के जरिए से तोड़ दिया जाए। खलीफा का इस्तेदलाल यह था कि अंबिया की विरासत उनकी औलाद में नहीं जाती। बीबी ने उम्मे ऐमन को पेश किया, उम्मे ऐमन उस वक्त बीबी की खादिमा थी। सवाल ये, उम्मे ऐमन बीबी की खादिमा कैसे बनी? क्या उन्होंने खरीदा था? बीबी ने हजरत उम्मे ऐमन को इसीलिए पेश किया कि हजरत उम्मे ऐमन रसूल खुदा की खादिमा थी। अब सवाल ये, अगर हजरत उम्मे ऐमन रसूल अल्लाह की खादिमा थी तो खुद बीबी फातिमा के पास कैसे आ गई? क्या बीबी ने रसूल अल्लाह से खरीदा था? तो खरीदा नहीं था, बल्कि ये इर्स में रसूल अल्लाह से बीबी के पास पहुंची थी। बीबी ने इसीलिए उम्मे ऐमन को पेश किया कि अगर ये उम्मे ऐमन मेरी खादिमा है तो सिवाय इर्स के किसी और रास्ते से ये मेरी खादिमा नहीं बन सकती। ये खुद इस बात का सबूत है कि नबी से विरासत मुंतकिल होती है। इस दावे को रद्द कर दिया गया, इस दावे को रद्द कर दिया गया। बस एक तरफ से अमीरुल मोमिनीन की जात को रद्द कर दिया गया, जिनके लिए रसूल खुदा ने कहा था कि हक इनके पीछे जाता, दूसरी तरफ से बीबी उम्मे ऐमन की शख्सियत को रद्द कर दिया गया। तो कुल कोशिश क्या थी? कुल कोशिश चंद दरख्त बचाना नहीं थे, बल्कि अहले बैत के मकाम और उनकी मंजिलत को माशरे के अंदर कम करना था। और उनके अपने दिमाग में यह था कि मादी वसाइल को ये इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा इस मादी वसीले को इनके हाथ से छीन लिया जाए, जिसको मैं दूसरे दर्जे की इल्लत समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि खानदान अहले बैत की अजमत उससे कहीं ज्यादा थी कि मादी वसाइल के होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता उसके। फिर तीसरा मामला, इबादात में इन्हराफात के जरिए अहले बैत को गोशानशीन करने की कोशिश, ये भी उसी जमाने के अंदर अंजाम पाया। मैंने इसकी तशरीह आपकी खिदमत में अर्ज की थी कि कहा कि हम 10 मिनट पहले अजान देंगे या हम अजान एक खास तरीके से देंगे। तो कोशिश क्या थी? कोशिश ये थी कि हम सब तो इस तरह से करेंगे, अब अहले बैत चूंकि रुकावट करेंगे तो खुद ब खुद आइसोलेटेड होते चले जाएंगे। इस तरीके से खानदान अहले बैत को गोशानशीन किया गया। मुख्तलिफ मसनूई अशखास के जरिए मसनूई रहबरी ईजाद करने की कोशिश की। अब अमीरुल मोमिनीन के लिए रिवायत मौजूद है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, इनके मुकाबले में मसलन अबू हुरैरा जैसे शख्स को मुहद्दिस कहकर पेश कर दिया गया कि ये तुम्हें रसूल खुदा की अहदीस को सिखाने की कोशिश करेंगे। इस तरह हर मैदान के अंदर शुजात का मामला आया तो मैंने कहा कि वो सैफुल्लाह नाम करके लकब जो था वो किसी के नाम पर मुख्तस करने की कोशिश की गई। इल्म को इस तरीके से, शुजात को उस तरह से, तक्वा और परहेजगारी की बात आई तो उसके मुकाबले में औकात और बनाए गए कि हाँ ठीक है, ये अहले बैत के मुकाबले में इनके तक्वा और परहेजगारी के ऊपर ताकीद की जाए। और अब भी ऐसा ही हुआ, अभी तक ऐसा ही रहा। बोलिए कि अब आप देखिए कि इल्म फिक्र के अंदर महारत किसके पास थी? तो अगर आलम सबसे ज्यादा जानने वाले रसूल अल्लाह के असाब में अमीरुल मोमिनीन की ज़ात मुकद्दस थी तो आइम्मा अरबा कोई और क्यों कहला रहे हैं? आइम्मा अरबा कोई और कहला रहे, इसका मतलब क्या था? इल्म आइम्मा के मुकाबले में कुछ और लोगों के इल्म को बढ़ाकर दिखाने की कोशिश की गई। यहां तक कि बाज रिवायतें हमारे पास मौजूद हैं कि अमीरुल मोमिनीन की जान को भी खतरा लाहक रहा। बाज मकामात पर इस कस्म की साजिशें करने की कोशिश की गई कि अगर अली नमाज में हो तो उन्हें किसी तरीके से वहीं पर खत्म करने की कोशिश की जाए, लेकिन किसी ने इस काम की जुरअत नहीं की जाहिर अमीरुल मोमिनीन की उस शुजाअत के मुकाबले। उसके बाद इसी दौरान में, यानी अगर आप वाकई सीरत को सही समझना चाहें तो उस माहौल को समझने की कोशिश कीजिए जिसके अंदर वो सीरत अहले बैत अंजाम पा रही थी। उसी जमाने में जब खिलाफत की तरफ से इस तरह की साजिशें हो रही थी, बनी उमैया अपने काम को अंजाम दे रहे थे। यानी मुसलसल मैं आप सर्च करूंगा, तीन अलहदा ग्रोह आपको उस जमाने में सोचने पड़ेंगे, तीन अलहदा अफराद, एक खानदान अहले बैत, एक वो खुलफा اور ان کا نظام, اور تیسرا یہ بنی امیہ جو چھپے دموں خاموشی کے ساتھ اسلام کی بیخنی کے اندر مشغول ہیں, جڑوں کو اکھیڑنے میں مشغول ہیں. خلافت ثلاثہ اور اموی سازشیں. اموی سازشوں کا اصلی مقصد کیا ہے, یہ نقطہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اموی سازش کا مقصد خلافت کا حصول نہیں ہے. خلیفہ تو بن سکتے تھے کسی بھی طریقے سے. اموی سازشوں کا اصلی مقصد اسلام کو ختم کر کے جاہلیت کو زندہ کرنا تھا, اور یہ وہ چیز تھی جس کو امام حسین علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جاہلیت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے اسلام کا خاتمہ کر کے. اور یہ وہ جگہ تھی جہاں امام نے جب شہادت دی تو قیامت تک پھر کوئی اس کام کو انجام نہیں دے سکا, ہمیشہ کے لیے وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. خلافت اسلامیہ تک رسائی کی مسلسل کوشش تاکہ اندر سے اسلام کا خاتمہ کیا جائے. کوشش کیا تھی؟ کوشش یہ نہیں تھی کہ اب جنگ کر کے شکست دیں, چونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ اسلام اب اتنا پھیل گیا ہے کہ ہم جنگ کر کے اسلام کو شکست نہیں دے سکتے. کوشش یہ تھی کہ ہم خلافت تک پہنچے اور خلیفہ بننے کے بعد کہیں کہ اسلام مصنوعی دین تھا, اسلام غلط دین تھا, اور اس کی تاثیر جو ہونی تھی وہ ظاہر ہے کہ اسلام کے لیے تباہ کن تاثیر تھی. میں اس کی مثال میں اس طرح سے عرض کرتا ہوں, جیسے آج پوپ اعلان کر دے کہ عیسائیت غلط دین ہے, یا مثال کے طور پر نعوذ باللہ مثلاً سعودی عرب کا کوئی بہت بڑا عالم جو ہیئت علماء کبار کے اندر ہے وہ اعلان کر دے کہ اسلام غلط دین ہے, تو معاشرے کے اندر ایک ہلچل مچ جائے گی. یہ چاہتے تھے کہ پہلے اسلام کے خلیفہ بنے اور پھر اسلام کا خلیفہ بننے کے بعد اعلان کریں کہ اسلام جو ہے وہ غلط دین ہے, اور خاندان اہل بیت نے اس کا راستہ روک لیا, پھر کبھی اس اعلان کو نہ کر سکے. اسلامی ممالک میں اقتدار کی مضبوطی بالاخص شام کے ذریعے سے, شام کے ذریعے انہوں نے اپنے اقتدار کو مسلسل مضبوط کرنے کی کوشش کی. تیسرا معاملہ بنی ہاشم اور بالاخص اہل بیت کو گوشہ نشین کرنے کی کوشش کی, یعنی اپنے مہروں کو اس طرح سے پھیلایا معاشرے کے اندر کہ بنی ہاشم اور اہل بیت کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے. خاص کر خلیفہ سیوم کے خلیفہ بننے کے بعد تمام گورنر بنی امیہ سے بننا شروع ہو گئے, اور یہ جو بنی امیہ کے گورنر بنے تو انہوں نے باقاعدہ ایک منصوبہ اس طرح سے رکھا کہ اب کسی بنی ہاشم کو معاشرے کے اندر اچھا مقام نہ دیا جائے, تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے بنی ہاشم کا احترام ختم ہو جائے اور بنی امیہ اس کی جگہ اقتدار حاصل کرے. اقربہ پروری کے ذریعے معاشرے میں بے نظمی اور اختلاف کثرت کے ساتھ عائزہ اور اقربہ گورنر بنائے گئے, پیسہ دولت شہرت ان کے حوالے کی گئی, جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اختلاف پھیل گیا, لوگ بے بس ہو گئے, اور لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اگر یہی سب کچھ اسلام تھا تو پھر جاہلیت میں کیا برائی تھی, اگر یہی اسلام تھا کہ اقربہ پروری ہوتی, دولت جو ہے وہ عائزوں کے اندر عائزہ اور اقربہ کے اندر تقسیم ہوتی, تو پھر جاہلیت میں اس میں کیا برائی تھی. اور اس طرح سے یہ مادہ پرستی کے فروغ میں سر فہرست قرار پائے, پورے معاشرے کو مادہ پرستی سے مبتلا کر دیا. یہ میں آپ کی خدمت میں آج بھی عرض کروں, وہ یہ کہ کسی بھی معاشرے کو آپ نے تباہ و برباد کرنا ہے تو اس میں مادہ پرستی پھیلا دی. مادہ پرستی پھیلانے سے جس طرح ایک آدمی کو حریص بنا دینے سے, لالچی بنا دینے سے معاشرہ ختم ہو جائے گا, اسی طریقے سے پورے معاشرے کو اگر تباہ کرنا ہو تو اس کا ایک آسان راستہ یہ کہ ان کو مادہ پرستی کی آپ فکر میں سوار کر دیجیے, پھر کوئی عبادت کام نہیں آئے گی, پھر کوئی تقوی اور پرہیزگاری باقی نہیں رہے گی جو کام آئے, وہ سب کے سب مادہ پرستی کی دوڑ میں بھاگتے رہیں گے, اور اس دوڑ کے اندر عبادتوں سے, اللہ کی اطاعت سے, بندگی سے, ہر چیز سے خود بخود محروم ہوتے رہیں گے. خاص کر خلیفہ ثالث کے زمانے میں حالات انتہائی خراب ہو گئے, یعنی وہ دور بھی جو تقریباً 24 ہجرا سے لے کر 36 ہجرا تک کا دور ہے, اس دور کے اندر, اور آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت اسکالرز میں سے بھی کثیر ایسے اسکالر مل جائیں گے آپ کو, من جملہ مولانا مودودی اور ڈاکٹر کریم صدیقی اور مختلف لوگ, جنہوں نے کم سے کم اس دور کی بے نظمیوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کی, قبول کیا کہ ہاں اس دور کے اندر جو تھی معاملہ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا, یعنی وہ ایسا دور گزر رہا تھا کہ جس میں اب چھپانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہا تھا. خلیفہ ثالث کی خلافت میں پہلی بات اقربہ پروری اور بنی امیہ کی مضبوطی, اس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. یہاں اہل حکام کے ذریعے اس احکام اسلامی کی تصدیق, یعنی جو کچھ انجام پایا وہ اس قسم کا ہے کہ خلیفہ ثالث کے دور میں ایک شخص جاتا ہے فجر کی نماز نشے کے عالم میں 2 رکعت سے زیادہ پڑھا دیتا ہے, اور کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کر دیا, تو کہتا ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں, اس سے بھی زیادہ پڑھا سکتا ہوں, اور اس کے بعد منبر ہی میں بیٹھ کر شراب کی قید کر دیتا ہے. اسلامی احکام کی اس سے زیادہ تصدیق اس دور کے اندر قابل تصور نہیں ہے. اور ذرا تصور کیجئے کہ یہ سب کا سب کام اس وقت ہو رہا تھا جب نبی کی وفات کو 25 سال بھی نہیں گزرے, نبی کی وفات کو ابھی 25 سال بھی نہیں گزرے تھے اور یہ سب قسم اسلام کے نام پر انجام پا رہا تھا، نمازوں کا احترام ختم ہو گیا تھا، بدقسمتی سے شراب نوشی معاشرے کے اندر عام ہو گئی تھی اور درباروں کے اندر اس کا اثر و رسوخ کہیں سے کہیں پہنچا ہوا تھا۔ ان کو تمام برائیاں جن کو ابھی بھی ہم اسلامی معاشرے میں تھوڑا کم دیکھیں گے، اس زمانے کے اسلامی معاشرے کے اندر آسانی سے پھیلا دی گئی۔ نزدیکی اصحاب رسول اور مخلصین کی توحید، ہمارے پاس ایک لسٹ بنی ہوئی ہے اصحاب کی اس تاریخ کے حوالے سے 24 ہجرا سے لے کے 36 ہجرا تک، جن کی کسی نہ کسی حوالے سے تصدیق ہوئی ہے۔ اب اس میں اگر کوئی دلیل کہنا چاہے تو ہم سادہ سا کام یہ کریں گے کہ کوئی بھی اپنے آپ سے پوچھے کہ عبداللہ بن مسعود کی وفات کیسے ہوئی۔ عبداللہ بن مسعود نامور راوی ہیں، اہل بیت نبی اکرم سے روایت کرتے ہیں، مفسر قرآن سمجھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے ان کی وفات کیسے ہوئی تو جا کر تاریخ میں آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن مسعود دربار کے اندر موجود تھے، انہوں نے دربار کے بعض اعمال کے اوپر اعتراض کیا اور اتنا ان کو زد و کوب کیا گیا کہ عبداللہ بن مسعود کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور اسی عالم میں ان کی وفات واقع ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر زید کے بارے میں سوال کریں کہ وہ خزانے دار تھے، خزانچی تھے، کنجیاں بیت المال کی ان کے پاس تھی، ایک موقع پر آتے ہیں کنجیاں پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس چابیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو جس کی مرضی آتی ہے اٹھا کر لے جاتا ہے، بیت المال اب بالکل خالی ہو چکا ہے۔ اس طرح جو نزدیکی اصحاب تھے، خود حضرت ابو ذر کے ساتھ جو کچھ انجام پایا وہ میں نے آپ کی خدمت میں خلاصے کے طور پر عرض کر دیا، تو جو اصحاب بچے کچھ رہ گئے تھے جن کے اندر بولنے کی ہمت تھی، ان کو معاشرے کے اندر اس طرح سے ذلت کا، بظاہر ذلت کا شکار کر دیا گیا۔ یہودی اور مفاد پرست علماء کی بالادستی ہوئی، ایک واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ عوام میں بغاوت اور سرکشی، پہلے جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر عوام کے اندر بغاوت جو ہے وہ ابھرنے لگتی ہے، لوگوں کے اندر سے اسلامی معیار ختم ہو گئے، لوگوں کے اندر مادہ پرستی دوڑنے لگی، ہر ایک آدمی کوشش کرنے لگا کہ ہم بھی اس بہتی ہوئی گنگا سے بہرحال کچھ نہ کچھ حاصل کر رہا ہے۔ اب اس عالم میں خلیفہ ثالث کو مار دیا گیا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا رک کر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خلیفہ ثالث کے قاتلین در حقیقت کون لوگ قرار پائے، تو قاتلین کون ہوں گے؟ ہمارے خیال میں بنی امیہ اور بالاخص مروان بن حکم، جس نے خلیفہ سے بھرپور استفادہ کیا۔ یہ بنی امیہ تھے جنہوں نے پورے مملکت اسلامی پر قبضہ کر لیا، اس کی دولت کو لوٹ کھسوٹ کر لیا، یعنی ایسا عالم بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی کو 600,000 درہم ایک تحفے میں دے دیے گئے۔ اس زمانے میں 8,000 درہم سے ایک بڑا گھر خریدا جا سکتا تھا، 40,000 درہم سے کئی باغات، آج کے زمانے کے کئی باغات خریدے جا سکتے تھے۔ ایک آدمی کو ایک تحفے میں 600,000 درہم ملے۔ ایک موقع پر مروان بن حکم کو 10,000,000 درہم دے دیے گئے، یعنی عالم یہ ہوا کہ ایک صحابی کے پاس گھوڑوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ رہی تھی۔ یہ جو سب کچھ ہوا، ہم سمجھتے ہیں اصل ذمہ دار خلیفہ ثالث کے قتل کے یہ لوگ تھے کہ جن لوگوں نے یہ تمام بینیفٹس حاصل کیے، اور خاص کر مروان جو ان کا وزیر بنا ہوا تھا اور ان کے نام پر اعمال کو انجام دے رہا تھا۔ وہ واقعہ بہت مشہور ہے، اب کیا وہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ جب خلیفہ ثالث کی ایک سواری کو پکڑا گیا جس کے اندر لکھا تھا محمد بن ابی بکر کو قتل کر دو، واپس آ کر خلیفہ سے سوال کیا گیا کہ یہ سواری آپ کی ہے؟ انہوں نے کہا سواری میری ہے۔ کہا یہ مہر آپ کی لگی ہوئی ہے؟ کہا یہ مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ کہا اس کے بعد یہ جو خط استعمال ہوا یہ آپ کا ہے؟ کہا یہ بھی ہمارا ہے۔ اس کے بعد پوچھا یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ کہا نہیں لکھا میں نے نہیں۔ اب یہ انتہا تھی کہ سواری وہی خلافت کی سواری تھی، وہ پیکٹ جس کے اندر خلیفہ کے لیٹر جاتے تھے وہ پیکٹ وہی پیکٹ تھا، وہ اسٹیمپ جو خط کے نیچے لگنی چاہیے وہ اسٹیمپ لگی ہوئی تھی، اور خط خلیفہ نے نہیں لکھا تھا، در حقیقت مروان بن حکم نے لکھا تھا۔ ان لوگوں کا استفادہ یہاں تک پہنچا ہوا تھا۔ وہ ظالم حکام قاتل ہیں جن سے ناراضگی عوامی بغاوت کا سبب بنی، وہ اصلی قاتل ہوں گے جنہوں نے لوگوں کو پرووک کیا، لوگوں کو ابھارا، یہاں تک کہ لوگ قتل تک پہنچ گئے۔ وہ افراد جو مصر سے آئے وہ قاتل قرار پائیں گے، اور ان میں طلحہ اور زبیر سر فہرست تھے۔ بدقسمتی سے یہی دو افراد تھے جو قتل عثمان پر بدلے کا مطالبہ امیر المومنین سے کر رہے تھے، جو امیر المومنین سے کر رہے تھے کہ قتل عثمان کے قاتلین عثمان کو سزا دو، اور یہی دونوں سر فہرست تھے اس مصر سے آنے والے گروپ میں کہ جو لشکر لے کر آیا تھا خلیفہ کے خلاف۔ بعض امہات المومنین جنہوں نے عوام کو خلیفہ کے خلاف احکام دیے، اس وقت کی تاریخ کے اندر واضح طور پر موجود ہے، تاریخ طبری نے نقل کیا، تاریخ یعقوبی نے نقل کیا، اس زمانے کے احوادث میں خلیفہ ثالث کے قتل کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے کہ امہات المومنین میں سے بعض لوگوں کو بار بار کہہ رہی تھیں کہ یہ یہودی ہو گیا، اسے قتل کر دو۔ ये वो सबक थे जिसकी बुनियाद पर ये वो लोग थे जिनको हम कह सकेंगे कि ठीक है इन्होंने कत्ल के अंदर शिरकत की। और उसके बाद अमीर शाम कातिल जिससे मदद मांगी खलीफा वक्त ने और उसने मदद से इनकार कर दिया। यानी हमारे पास मौजूद है तारीख के अंदर कि खलीफा सेबुम ने अमीर शाम के नाम खत भेजे और उन खतूत को अमीर शाम वसूल करते रहे लेकिन उन खतूत के जवाब में कभी भी कोई मदद इरसाल नहीं की। खलीफा के पास कोई फौज नहीं थी और अमीर शाम के पास कसरत के खिलाफ फौज मौजूद थी। अगर उस फौज का एक मुख्तसर हिस्सा भी भेज देते तो खलीफा की जान शायद बचाई जा सकती थी। खलीफा सालिस के मामले में अमीरुल्मोमिनीन का रवैया क्या था? अब यहां पर हम चाहेंगे कि थोड़ा सा और तहम्मुल करके देखा जाए कि अमीरुल्मोमिनीन इस खिलाफत के हामी नहीं थे, इस खिलाफत के मुखालिफ थे, रस्म खिलाफत पर एतराज कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है क्या वो खलीफा के कत्ल के हामी थे कि खलीफा को कत्ल कर दिया गया? तो उनकी सीरत को हम यहाँ पर बयान करेंगे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले वहां। हत्तल इम्कान नसीहत और नहीं अनिल मुनकर अमीर मुमिनीन की तरफ से नजर आता है। मुकद्दर खलीफा सालिस के पास जाया करते थे और खलीफा सालिस को समझाने की कोशिश करते थे कि हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं, हालात हमारे बहुत खिलाफ है। नहजुल बलागा की अगर आप खुद बात में जायजा लें जिसकी मैं आखिर में फहरिस्त आपको दूंगा इंशाल्लाह, जैसे कि मैंने पिछले जलसे में भी आपसे कहा, तो आप उसमें जाकर देखेंगे कि मुसलसल अमीर मुमिनीन की नसीहतें खलीफा सालिस के नाम पर मौजूद है जिसमें वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं अनिल मुनकर था, बार बार कहते थे कि मरवान को अपने आप से दूर कर दो। यानी एक वाकया यहाँ तक मौजूद है कि जब उन्होंने मुकर्रर कहा खलीफा सालिस से कि मरवान को दूर करो तो खुद खलीफा सालिस की जौजा हजरत नायला ने खलीफा से कहा कि इतना तुम्हें अली कहते हैं, अब तुम्हें वाकया मरवान को दूर कर देना चाहिए। लेकिन खलीफा ने इसके ऊपर कोई अमल अंजाम नहीं दिया। इस्लामी अहकाम का नजरियाती दिफा, लोग अहकाम तोड़ रहे थे और अमीरुल मोमिनीन नजरियाती तौर पर अहकाम को साबित करने की कोशिश करते थे कि सही है कि माशरे के अंदर अमल नहीं हो रहा लेकिन ये इस्लाम की राय नहीं है। अकरबा परवरी होती थी तो अमीरुल मोमिनीन उसके खिलाफ एतराज करते थे कि इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बागियों और खलीफा के दरमियान मुफाहमत की कोशिश, मुसलसल अमीरुल मोमिनीन कोशिश करते रहे कि किसी तरह बागियों और खलीफा के दरमियान कोई मुफाहमत तय पा जाए। यहां तक के एक दफा मुफाहमत तय पा गई, खलीफा ने यह तय कर लिया कि हाँ मिस्र के गवर्नर को हटा दिया जाएगा और मोहम्मद बिन अबी बकर जो खलीफा अव्वल के फर्जंद थे और अमीर मोमिन के असहाब में से थे उनको गवर्नर बना दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से फिर वो वाकया पेश आया जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जब मोहम्मद बिन अबी बकर मिस्र की तरफ रवाना हुए तो पता चला कि खलीफा की तरफ से एक और लेटर मिस्र गया है जिसके अंदर ये लिखा गया है कि मोहम्मद बिन अबी बकर को मिस्र पहुंचते ही कत्ल कर दिया जाए। मुखलिस और बावफा असहाब का इज्तिमा और उनका दिफा, अमीरुल मोमिनीन जानते थे कि ये हवादिस ऐसे हवादिस हैं कि जिसके अंदर इस्लाम की मुखलिस शख्सियतें खत्म कर देने की कोशिश की जाएगी बनी उमैया की तरफ से, तो मुसलसल कोशिश करते रहे कि उनके मुखलिसीन में से कोई इस हंगामे का शिकार ना हो। हत्तल इम्कान खलीफा की जान की का दिफा किया, जैसे कि रिवायत के अंदर मौजूद है बिल्कुल सही मौजूद है कि जहां तक हमें समझ में आता है बिल्कुल सही है, तो ये इमाम हुसैन और इमाम हुसैन को भेजा के किसी तरीके से वो वहां मौजूद रहे और खलीफा की जान जो है वो ना जाए। यहां मैं अर्ज करता चलूं कि मैं अपने तौर पर समझता हूं कि उस मजमे के अंदर हमने इशारा भी किया इस बात के ऊपर खलीफा सालिस के मामले में अमीर शाम की हिकमत अमली, हम समझते हैं उस मजमे के अंदर जो खलीफा के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा था उसमें भी बनी उमैया के अफराद मौजूद थे, उस मजमे के अंदर भी बनी उमैया के अफराद मौजूद थे और वो चाहते थे कि खलीफा को मार दिया जाए। उसके जरिए उनके अपने मकासद पूरे होने थे जिसकी तरफ हमने यहाँ पर इशारा किया है। मैं बस जल्दी से इसे इख्तिताम पज़ीर करता हूँ। खलीफा सालिस के मामले में अमीर शाम की हिकमत अमली क्या थी? पहला तो ये कि खलीफा की मदद से गुरेज किया जाए ताकि खिलाफत में इंतशार फैले। खलीफा की मदद से गुरेज करके उन्होंने बागियों को मौका दिया कि वो और आगे आए और मदीने के अंदर अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे। खिलाफत में इंतशार से अमीर शाम को क्या फायदा था? अमीर शाम खुद खिलाफत के दावेदार थे तो चाहते थे कि खिलाफत में इंतशार रहे ताकि उनकी खिलाफत का रास्ता किसी तरीके से हमवार हो जाए। बागियों के अंदर साजिशी अनासर के जरिए खलीफा के कत्ल के अस्बाब फराहम थे। हम समझते हैं कि अगर तसव्वुर कीजिए अगर उन बागियों में अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले होते, उन बागियों में अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाले होते तो इमाम हसन इमाम हुसैन को दरवाजे पे खड़ा देखकर क्या फिर भी हमला करते? तो हमारे जहन में किसी तौर पर यह नहीं आता कि अमीरुल मोमिनीन का कोई मानने वाला, उनका कोई चाहने वाला इमाम हसन इमाम हुसैन को देखता कि वो रोक रहे हैं और फिर भी हमला कर देता। यानी हमारे पास रिवायत यहां तक मौजूद है उस तारीख तबरी के अंदर कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी किसी ने जदकोप किया है उस मौके के ऊपर जब खलीफा के घर पे हमला किया, तो क्या अमीरुल मोमिनीन के मानने वालों में कोई ये जुरत करेगा कि इमाम हसन और इमाम हुसैन को गुजरता हुआ चला जाए कि जो असहाबे रसूल के सामने यबना रसूल अल्लाह कहलाते थे, रसूल अल्लाह के बेटे कहलाते थे। इसका मतलब है जिस किसी ने भी ये काम किया कोई ऐसा ग्रोह था जिसके सामने रसूल अल्लाह के बेटे होने का भी कोई एहतराम नहीं था, और ये सिवाय उमवी ग्रोह के कोई और ग्रोह हमें ऐसा नजर नहीं आता। मरवान के जरिए खलीफा की हैसियत की पामाली करवाई, फिर उसके बाद अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ इल्जाम तराशी ताकि खिलाफत के असली हकदार को मशकूक कर दिया जाए। ये असली उनसर था अमीर शाम की हिकमत अमली का कि खलीफा को मरवा दो, दो जो उम्मीदवार हैं यानी तलहा और जुबैर उनको किसी तरीके से कत्ल में मुलव्वस करो, और अमीरुल मोमिनीन पर इतने इल्जाम लगाओ कि तमाम के तमाम खिलाफत के उम्मीदवार खत्म हो जाए और खिलाफत का महवर मदीने से मुंतकिल होकर किसी तरीके से शाम। खिलाफत के तमाम मुतवक्के अफराद के खिलाफ साजिश ताकि अपनी खिलाफत का रास्ता हमवार हो। एक दो नुकात हमें और यहाँ पर देखने थे, लेकिन ये है कि अब हम मजीद वक्त उसके ऊपर नहीं दे पाएंगे, अपनी गुफ्तगू को यहीं रोकते हैं। ये जो पॉइंट है बस ये पॉइंट देखते जाइए, कबूल बैत के वक्त लऊनी वल्तमिसु गैरी का इमाम का लखब इमाम का फरमाना वो किस लिए था। जब ये तमाम हालात पेश आ गए मदीने के अंदर अफरा तफरी मच गई, कभी लोग किसी सहाबी के पास जाते थे कभी किसी के पास जाते थे और उनसे कहते थे हम किसको खलीफा बनाएं, मुसलसल इसरार कहा गया कि नहीं अली को खलीफा बनाया जाए, तो लोग अमीरुल मोमिनीन के पास आए और कहा कि आप खलीफा बनिए। अमीरुल मोमिनीन के पास जब लोग आए तो मौलाना ने फरमाया दऊनी वल्तमिसु गैरी, मुझे छोड़ दो और जाओ किसी और को खलीफा बनाने की कोशिश करो। अब सवाल ये है कि अमीरुल मोमिनीन 25 साल से गज़ब खिलाफत पर एतराज करते आ रहे थे, फिर इस मौके पर आकर दऊनी वल्तमिसु गैरी क्यों कहा, मुझे छोड़ दो और किसी और को खलीफा बनाओ। उसकी तशरीह उन्होंने अपने जुमलात में खुद भी इरशाद फरमाई है, नुकात की सूरत में हमने यहां बयान किया। बगावत के नतीजे में माशरे की अफरा तफरी और इस्लामी अहदाफ से दूरी, जानते थे कि बगावत हुई भी है माशरे के अंदर अफरा तफरी है, लोगों के अहदाफ इस्लामी अहदाफ नहीं है। तो अभी जो आकर कह रहे हैं कि खलीफा बन जाइए ये इस्लामी अहदाफ की खातिर नहीं कह रहे बल्कि बागियों के अपने अहदाफ थे, और बागी चाहते थे कि हम अली को खलीफा बनाकर अपने अहदाफ को हासिल करने की कोशिश करें। तलहा और जुबैर यूं सोच रहे थे कि अगर अली खलीफा बने तो हमें मकाम देंगे मनसब देंगे, इनके अपने अहदाफ वहां पर कार फरमा दे। उमवी इल्जाम तराशी के मुकाबले में चारा जोई, अमीरुल मोमिनीन जानते थे कि मक्तूल खलीफा के बाद जो भी खलीफा बना उस पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया जाएगा, उस पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया जाएगा। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन ने सबसे पहले यह बता दिया कि मुझे ऐसी खिलाफत की लेने की कोई जरूरत नहीं है जिसमें इस किस्म का मामला। मुद्दईया ने खिलाफत के लिए चैलेंज, मौलाना ने मैदान को छोड़ दिया, मैदान को छोड़ा इसलिए ताकि जितने लोग मुद्दईया खिलाफत है वो अपनी किस्मत को आजमा के देखें, यानी अब अगर कोई समझता था कि खिलाफत ले सकता था तो लेकर दिखाए इन सब हालात में जो उस वक्त मौजूद थे। खिलाफत की दावत देने वालों का भी एक इम्तिहान था कि जो लोग कह रहे थे कि आइए खलीफा बनिए, मौलाना का जाओ किसी और को देखो, तो अब अगर संजीदा होंगे फहमोशूर रखेंगे तो दोबारा आएंगे, और अगर फहमोशूर नहीं है तो जाएंगे किसी और के पास। इसका मतलब ये इनका खिलाफत का कोई मेयार नहीं होगा, तो मौलाना ने चाह कि इस जरिए से भी एक आजमाइश हो और बाद के सख्त इकदाम के लिए लोगों में मजबूती और वफादारी की जमानत। मौला जानते थे कि अगर खलीफा बनाए गए लोगों ने खिलाफत को कबूल किया तो उसके बाद मौला सख्त तरीन इकदाम अंजाम देंगे जिसकी तरफ हम इशारा करेंगे बयान करेंगे। मौला चाहते थे कि इससे पहले कि वो मरहला पहुंचे कि लोग खुद कहें कि इतने सख्त इकदाम क्यों अंजाम पाए, लोगों को खुद एक इम्तिहान के अंदर रखा जाए ताकि उनकी वफादारी का यकीन हासिल हो जाए। अपनी आराज को हम यहीं पर इख्तिताम पसीर करते हैं, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसके बाद की मिसाल बात करेंगे। दूर भेजिए मोहम्मद वाले। अब ये क्या किसी जहन में कोई सवाल है, सवाल से तो बयान एक मतलब मैं आपकी हिफ्त पास करना चाहूंगा। अब ये कि मुसलसल इस बात के ऊपर गौर फरमाइए कि सीरत और तारीख में असली फर्क क्या होता है। पिछले हफ्ते में पहला काम जो किया था वो यही काम किया था कि सीरत और तारीख में फर्क क्या है। तो तारीख में हमें वाकयात को बयान करना होता है, तो हम बताते हैं हुसैन चौथे हिजरा में क्या हुआ, पैंथे हिजरा में क्या हुआ, और इस तरह वाकयात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जबकि सीरत में हमारी अंडरस्टैंडिंग इस बात पर होती है कि सामने वाले वाकयात से पहले से आगाह है, वाकयात को जानते हैं और उन वाकयात के ऊपर बुनियाद बनाते हुए हमने कुछ नताइज को हासिल करना है। तो हम यहाँ पर इसीलिए वाकयात को कम अज कम जिक्र कर रहे हैं और सिर्फ तहलील और तजिए की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो वाकयात आपके ध्यान में पहले से मौजूद हो उनमें मजीद कोई काम किया जाए, सिर्फ उन्हीं को तकरार करने पर इत्तेफाक न किया जाए। अगर आप इस सिलसिले में कोई मुताला करना चाहें तो मैं एक दो किताबों को रिकमेंड करना चाहूंगा, उनको जरूर मुताला करना। इस सिलसिले में शेख मुताही की किताब है सीरत आइम अथार, सीरत आइम अथार, इसमें 12 इमामों की सीरत का उन्होंने जायजा लिया है। इसमें मेरे पहला चैप्टर अमीर मोमिनीन की सीरत के हवाले से है, उसको आप मुताला करवाइए। बाकर फर्शी एक मुसन्निफ है इराकी, किताब का फारसी में और उर्दू में तर्जुमा हुआ है, उसमें भी आप जाकर इस हिस्से को मुताला करवा सकते हैं। इसी तरीके से शहीद सदर की एक किताब है, उनका एक मकाला है तहलीली सीरत के तहलीली जायजे के एतबार से, जिसमें उन्होंने तशय्यों के आगाज का मुताला किया कि शियत का फरोग कहाँ से शुरू हुआ, शियत कहाँ से बनी, किन हालात में बने, और उसी में इस किस्म की डिस्कशन किए हुआ। अब मेरा यहीं को खत्म करते हैं, दुरूद भेजें मोहम्मद वाले। Allah 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 Allah